हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। चलिए आप सब हमारे साथ। एक तरफ सबको यहाँ पर लाइन लगाना है और उसका भी हमें पता चल पाएगा। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ी दूर पर खड़े होकर माइक में कहा। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर वहाँ पर एकदम ही हंगामा हलचल मच गई, लेकिन इस वक्त वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, कुल मिलाकर 200 लोग ही होंगे, क्योंकि इतने ही इम्पोर्टेंट लोगों को सुनैना ने पार्टी में इनवाइट किया था, और आदित्य का बस चलता तो वो तो शायद 20 लोगों को भी ना बुलाता। वो सारे लोग गुस्से में चिल्लाकर आपस में बातें करने लगे। कोई भी उन सिक्योरिटी गार्डों की बात मानने और उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं लग रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें पार्टी में बुलाया गया है या फिर ये सब करने के लिए? क्या बेवकूफ़ी है ये? हाँ, हमें यहाँ से जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी देगा? पता नहीं कितने दुश्मन पाल रखे हैं। हाँ बताओ, आज तक तो दुनिया से छुपा कर रखा था अपना चेहरा, आज सामने आया और आज ही ये सब। हाँ सच कहा तुमने, मैं भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के मालिक का फेस रिवील होने का सुनकर ही इस पार्टी में आई थी। मुझे पता होता यहाँ ये सब होगा तो कभी नहीं आती। वहाँ पर अभी अभी जो हंगामा हुआ, उसके बाद से अभी तक हॉल की लाइट पूरी तरह से पहले की तरह नहीं जली है, और वहाँ पर अब उतनी तेज़ रोशनी भी नहीं है। और जब सिक्योरिटी गार्ड ने सारे लोगों को एक लाइन में खड़े होने के लिए कहा, तो वो सारे लोग चिढ़कर आपस में बात करते हुए तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे, और कोई भी उन गार्ड की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उन सारे लोगों की आवाज़ वहाँ पर मौजूद सभी को सुनाई दे रही थी। मनस्वी, अनय और स्वीटी समेत घर के बाकी और आदित्य सुनैना के क्लोज सारे लोगों ने भी ये बात सुनी। अक्षत वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो आदित्य के साथ ही उस आदमी के पीछे गया हुआ है। मनस्वी ने काफ़ी कसकर अनय का हाथ पकड़ा हुआ है, और अंकित भी उसके पीछे उसे प्रोटेक्ट करता हुआ खड़ा है, लेकिन उस पर वो ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है। उसका पूरा ध्यान अनय की तरफ है, जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी परेशान लग रहा है। मनस्वी ने जैसे ही ये नोटिस किया, उसके दिमाग में कुछ आया और अपनी जगह से थोड़ा आगे आकर वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ आई, और उसने उस गार्ड से माइक मांगा। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक एक नज़र मनस्वी की तरफ ध्यान से देखा, और वो उसे पहचान गया, इसलिए उसने मनस्वी को वो माइक दे दिया। उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि मनस्वी क्या बोलने वाली है, लेकिन उसे इतना पता है कि वो काफ़ी समझदार है, इसलिए वो कुछ भी ऐसा तो नहीं बोलेगी जो वहाँ की सिचुएशन को और ख़राब कर दे। मनस्वी ने अपने हाथ में माइक लेकर कहा, अटेंशन प्लीज़, आप सब चुप हो जाइए और इधर मेरी बात सुनिए। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आदित्य सिंघानिया या उसकी फैमिली में से किसी का भी कोई दोष नहीं है, और ना ही उन लोगों की वजह से ये हुआ। जो भी अटैक हुआ है वो मुझ पर हुआ था, और उसकी वजह से ही लोग यहाँ पर आए, जिसकी वजह से आप लोगों को भी इतना कुछ झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी प्लीज़ आप सब कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो उस अटैकर को बचकर भागने और यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। मनस्वी की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद वो सारे लोग फिर से आपस में बात करने लगे, लेकिन फिर उन सभी को कुछ समझ में आया, और स्वीटी, नैना और अरुण, विवान ने भी उन सारे लोगों से बात करके उन्हें समझाया, और फिर वो सारे लोग एक लाइन में खड़े हो गए, और सारे गार्ड बहुत ही बारीकी से उन सबको चेक करने लगे, क्योंकि वो सारे बहुत ही ज़्यादा ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड थे, और चेहरे के एक्सप्रेशन से ही वो समझ जाते कि उनमें से किसने ये सब किया है। दूसरी तरफ वहाँ पार्टी हॉल से निकालकर कॉरिडोर में चलते हुए रश्मि वहाँ से आगे जा रही थी, और सिक्योरिटी गार्डों को धमकाने के बाद दक्ष भी उसके पीछे ही आ रहा था, उसे मानने और समझने के लिए। लेकिन तभी एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई, तो दक्ष ने रश्मि को अपनी तरफ खींचकर उसके कान पर अपने हाथ रख लिए, क्योंकि उसे पता है वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे में कोई भी शौक उसके क्या, उसके बच्चे के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। रश्मि को समझ नहीं आया कि दक्ष ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उसने बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा, और इतने दिनों में शायद पहली बार ही वो दक्ष के इतने ज़्यादा नज़दीक थी। उसने नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, और दक्ष थोड़ा सा टेंशन में इधर उधर देख रहा था। उसे वहाँ पर आसपास तो कोई भी नज़र नहीं आया, क्योंकि पार्टी हॉल से निकलकर कॉरिडोर में चलते हुए वो दोनों ही कॉरिडोर के एंड तक आ गए थे, और वहाँ पर एक रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, तो दक्ष ने तुरंत ही रश्मि को अपने साथ उस रूम के अंदर खींच लिया। दक्ष, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ नहीं आना, रश्मि ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। दक्ष ने उसे अपने साथ कमरे के अंदर खींच लिया, और दोनों के अंदर आते ही दक्ष ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। चुप करो अभी प्लीज़, ज़्यादा आवाज़ मत करो, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, और उन लोगों का ध्यान हमारी तरफ नहीं होना चाहिए, दक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। और उसके इस तरह से बोलने पर रश्मि काफ़ी हैरानी से अपनी आँखें बड़ी करके उसकी तरफ ही देख रही थी। दूसरी तरफ सुनैना कमरे के अंदर आई, और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था, लेकिन तभी उसे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद होने की आवाज़ आई, तो वो वापस दरवाजे की तरफ आई, और उसने कमरे के दरवाजे को ठोकते हुए कहा, आदित्य देखो ऐसा मत करो, मैं पहले ही तुमसे नाराज़ हूँ, अगर तुम मुझे इस तरह से लॉक कर दोगे ना तो मैं और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी, इसलिए प्लीज़ अभी खोलो दरवाज़ा। सुनैना ने कमरे के अंदर से ही इतना चिल्लाया
क्योंकि उसने देख लिया था आदित्य उसके पीछे आ रहा है, इसलिए वो समझ गई थी कि जरूर आदित्य ही वहां पर आया होगा। और सुनैना को लगा था कि वो उसके साथ बात करने के लिए उसके पीछे आ रहा है, उसे समझने या फिर सफाई देने के लिए। लेकिन फिर जब वो एकदम ही कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके वहां से चला गया, तो सुनैना को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा उनका वो कमरा साउंड प्रूफ है, तो बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं, ये सुनैना को समझ नहीं आया। और उस कमरे की सिक्योरिटी भी सबसे ज्यादा हाई है, दरवाजे के अलावा और कहीं से भी उस कमरे में एंटर करने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि खिड़की पर भी वहां लोहे की जाली बनी हुई है जिससे कोई भी अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उस कमरे से अटैच बालकनी भी नहीं है। पता नहीं ये हमेशा ऐसा क्यों करता है, खुद ही गलती करता है और फिर उसे लगता है कि मैं खुद ही उससे बात करने आऊंगी, और अब मुझे रूम में लॉक करके पता नहीं खुद कहां चला गया है, फिर से किसी की मदद करने बिना मुझे बताए। सुनैना ने गुस्से में दांत पीसते हुए बड़बड़ाया और इधर उधर डालने लगी, और फिर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ बांधे और फिर अपना मोबाइल फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगी। सुनैना के चेहरे पर अभी भी वैसे ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे, क्योंकि उसे रह रहकर आदित्य पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी अब दूसरी बार ही स्पॉइल हो गई, इसलिए अब उसका मूड भी पूरा खराब हो गया है। और आखिरकार उसने कपड़े चेंज करने की सोची। सुनैना अपने नॉर्मल सोने वाले कपड़े निकालकर कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ ही चली गई, और उसने अपना मोबाइल फोन वहीं बेड पर रख दिया।
आदित्य ने सुनैना को उस कमरे के अंदर जाते हुए देखा था, और उसे अच्छी तरह से पता था कि वो कमरा सबसे ज्यादा सेफ है, और उसे यो भी पता था सुनैना नाराज होकर वहां पर गई है, इसलिए वो खुद से बाहर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी उसने कमरा बाहर से भी लॉक कर दिया था, जिससे कि किसी का भी ध्यान उसी तरफ ना जाए और सुनैना वहां पर एकदम सेफ रहे। वो और अक्षत दोनों इस वक्त किसी का पीछा करते हुए अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर आ गए हैं, और वहां पर उन्हें अपने आगे कोई नजर नहीं आया। लेकिन सीढ़ियों पर भागते हुए किसी के कदमों की आहट जरूर आदित्य को सुनाई दी थी, और शायद अक्षत को भी, इसीलिए वो उसके साथ वहां पर आया। वो पूरा बांग्ला टू फ्लोर का बना हुआ है, इसलिए छत तीसरे फ्लोर पर है, और इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए वो दोनों ही बुरी तरह से थक गए हैं और हांफ रहे हैं। लेकिन पूरी सीढ़ियां चढ़कर आते हुए उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वहां छत पर उन्हें अपने सामने कोई भी नजर नहीं आया। तीसरी मंजिल से कूदकर भागना इतना आसान नहीं होता, अक्षत ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर आदित्य ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई और बोला, इसका मतलब जो भी है यहीं कहीं है, लेकिन छिपा हुआ, और हमें उसे ढूंढना है। आदित्य की बात सुनकर अक्षत ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया और दोनों अलग अलग दिशा में वहां से आगे बढ़े। देखो, तुम जो कोई भी हो यहां से बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि पूरे बांग्ले के चारों तरफ बहुत ही टाइट हाई सिक्योरिटी है, इसलिए अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप सामने आ जाओ, आदित्य ने जानबूझकर तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसे पता है जो कोई भी है वो वहां पर ही है और उन दोनों को देख सुन सकता है। हाँ, ये लुका छुपी का खेल खेलने का शौक तो तुम्हारा अभी पूरा नहीं होने वाला, इसलिए सामने आ जाओ और चुपचाप बता दो तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा था ये करने के लिए, तो आदित्य तुम्हें जाने देगा, है ना आदित्य? अक्षत ने भी चारों तरफ नजर घुमाकर इधर उधर देखते हुए कहा। और बंगले की छत पूरी बड़ी सी बनी हुई है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी सी पत्थर की पानी की टंकी रखी हुई है। इसके अलावा साइड में दीवार है और वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर छिपाने की कई सारी जगह है। अक्षत और आदित्य दोनों ही अलग अलग तरफ से उसी तरफ ही बढ़ रहे हैं, जैसे कि दोनों वहां पर दोनों तरफ आकर खड़े हो जाएं और जो कोई भी वहां पर छिपा हुआ हो उसे बचकर निकलने का कोई मौका न मिल पाए। उसी तरफ बढ़ते हुए उन दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा किया, क्योंकि उनकी बातों का उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके अलावा वहां पर कोई हलचल भी नहीं हो रही। देखो, तुम बच नहीं सकते, तो सारी कोशिशें बेकार हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा अगर तुम उसका नाम बता दोगे जिसने तुमसे ये करने के लिए कहा है, आदित्य थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए उसी तरफ झांक कर देखते हुए बोला। तो वहां पर उसे किसी की शर्ट का कोना नजर आया। क्रमशः